इन पिछले अध्याय में आपने देखा कि वेद और मानवी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वे एक युगल हैं और अपनी बेटी के लिए एक साथ आ रहे हैं। मेहमानों ने इस अप्रत्याशित खबर पर आश्चर्य व्यक्त किया, जबकि परिवार के सदस्य, विशेष रूप से वेदांत, असहज महसूस कर रहे थे। मानवी का समर्थन रीता और शेखर ने किया। अंततः वेद और मानवी अपने कमरे में आ गए और वेद ने अवनी के साथ रहने के लिए कहा, क्योंकि एक नया अध्याय शुरू हो गया। अब अगला। अब बताओ तो क्या चक्कर है, सच सच बताना। तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, अयान ने कहा। जो भी नाटक अभी हुआ था, इतना तो अयान जानता था कि वेद की मर्जी के बिना कोई उससे कोई काम नहीं करवा सकता। तो इस नाटक का क्या मतलब था, उसे जानना था। 5 साल पहले हमारी शादी हुई थी, उसी वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था और वो लड़का मरने वाला था। तब मैं शहर छोड़कर चला गया। हमारे साथ एक लड़का होता था ना, हर्ष, तुम्हें याद होगा, राजस्थान हरियाणा से था, वेद ने कहा। वो सीधे असली बात पर आ गया था। हाँ, नशे में तुमने गाड़ी का एक्सीडेंट कर लिया था, अयान ने याद करते हुए कहा। वहीं पर मानवी मिली थी मुझे। किसी गलतफहमी की वजह से वहाँ की पंचायत ने जबरदस्ती हमारी शादी करवा दी। हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं था, वेद बोला। क्या यार, अयान ने हैरानी से कहा, ऐसे जबरदस्ती शादी कैसे करवा सकते हैं किसी की? वहाँ के गाँव की पंचायतें ऐसी ही होती हैं। शादी के बाद हम दोनों एक रात रुके थे और अगले ही दिन हमें गाँव से बाहर निकाल दिया गया और मैं अकेला वहां से चला आया, मानवी को छोड़ दिया। ये कहकर वेद चुप हो गया। समझा, तो अवनी उसी रात की निशानी है, राइट? लेकिन फिर इतने सालों बाद ये अचानक क्यों? अयान को समझ नहीं आया। मैं विदेश चला गया था, जब लौटा तो मानवी मेरे ऑफिस में काम कर रही थी। मुझे लगा कि वो मुझे ब्लैकमेल करेगी, इसीलिए मैंने उसे ऑफिस से निकाल दिया। फिर जब मैं यहाँ पहुंचा तो देखा वो अवनी के साथ मौजूद थी। अवनी को देखते पहली ही नज़र में लगा कि हो ना हो इससे मेरा कुछ रिश्ता है। जब पता करवाया तो पता चला कि वो मेरी बेटी है, वेद ने बताया। तो क्या ये बात उसने खुद कही, तुमने उसे सीधे पूछा नहीं? अयान ने सवाल किया। बिल्कुल भी नहीं, गौतम ने ही सब पता करवाया, और जो फुटेज हर्ष से आई है वो भी गौतम ने ही मंगवाई है। असल में वो वीडियो क्लिप गाँव में किसी के पास थी, पता नहीं कैसे गौतम उसे निकाल लाया। ये सब उसी का काम है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जिंदगी में सीरियस हो जाऊँ, आखिर बेटी भी है मेरी और एक बीवी भी जो मुझसे बहुत गुस्सा है, वेद ने हंसकर कहा। तुम मना लो उसे, मानना तो पड़ेगा, अयान बोला। दोनों दोस्त बातें कर रहे थे, तभी अचानक अयान कुछ सोचने लगा। क्या सोच रहे हो, वेद ने पूछा। तुम्हारा तरीका ही मुझे अपनाना पड़ेगा, तुमने अपने डैड की हेल्प ली थी, मतलब तुमने कितना बड़ा चक्कर चलाया और मानवी और अवनी दोनों को अपनी जिंदगी में ले आए। मेरी और जोया की शादी हो चुकी है, मैं उससे तलाक मांग रहा था, मगर अब मुझे वो अपनी जिंदगी में चाहिए और वो मान नहीं रही। मैं ऐसा क्या चक्कर चलाऊं कि वो मेरे पास आ जाए और एक दिन मेरे कमरे में ही हो, जैसे मानवी तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे कमरे में आ गई, अयान ने कहा। उसकी बात पर वेद जोर जोर से हंसने लगा। चलो अब सोचते हैं, वेद बोला। मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारी कोई बेटी नहीं, हो भी नहीं सकती, सोचते हुए अयान थोड़ा मायूस हो गया। दोनों दोस्त देर रात तक बातें करते रहे। अब अयान की प्रॉब्लम थी, उसे भी जोया अपनी जिंदगी में चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी। जैसे ये वेद को मानवी मिल गई थी, उसे भी जोया चाहिए थी। जहाँ वेद बहुत खुश था, वहीं उसके मॉम और डैड भी बहुत खुश थे। वेद का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे पंडित जी की बात सच हो गई हो, और अब वो एक बात और सोच रही थी, क्योंकि वेद की शादी हो चुकी है, अब और लड़कियां उसके आसपास मंडराना छोड़ देंगी। मानवी उसे वेद के आसपास मंडराती करीना से ज्यादा अच्छी लगी थी। रमेश मेहरा ने किसी से कुछ नहीं कह रहा था, वो अपने कमरे में बहुत परेशान बेड पर लेटा हुआ था। वेद की शादी होना और वेद की बेटी होना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसने इस बात की सच्चाई पता करने के लिए अपने आदमी लगा दिए थे कि क्या सचमुच वेद और मानवी की शादी हुई थी या कहीं कोई और ही चक्कर चल रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से वेद ऐसे मानवी को मान जाएगा, ऐसा होना तो असंभव था। वेदांत अपनी वाइफ रीना पर बहुत गुस्से में था। वो कमरे में बैठा शराब पी रहा था और रीना सोने की कोशिश कर रही थी। जब वेदांत को बहुत ज्यादा नशा हो गया तो वो अपनी जगह से उठा और रीना की तरफ देखा। रीना आंखें बंद करके लेटी थी। उसने उसके पास जाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट खींच दिया। ये क्या बदतमीजी है, क्या है? रीना उठकर बैठ गई। तुम मुझे एक औलाद नहीं दे सके, वो वेद की एक बेटी है, मैं तुमसे तलाक ले लूंगा, वेदांत ने गुस्से में कहा। जो करना है करो, अब सोने दो, तलाक लेना हो तो तलाक ले लेना, रीना ने गुस्से से जवाब दिया। वो वेदांत की हरकतों से बहुत तंग थी। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है वो आप में होगी, आप टेस्ट के लिए भी नहीं जा रहे मेरे साथ। जैसे ही रीना ने ये कहा, वेदांत ने रीना के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। क्या समझती हो साली, मुझ में कमी है। मैं दूसरी शादी करूंगा और दिखाऊंगा तुम्हें कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तुम्हारे साथ तुम्हें एक दिन भी नहीं रहने वाला। जहां से जाते ही शादी होने दो सुधीर की, तुम्हें तलाक दूंगा। वो गुस्से में चिल्लाया और तमतमाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। असल में उसका कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो रहा था। माया और रैना दोनों उसने वेद के पीछे लगाई हुई थी, मगर वेद ने उन लोगों को अपने आसपास भी नहीं आने दिया था। अब जब उसकी वाइफ है तो लड़कियों को अपने आसपास आने भी नहीं देगा। अपने फेल हुए प्लान का सारा गुस्सा उसने रीना पर निकाला। अब जब वेद अपनी लाइफ में सेटल हो रहा था, उसकी वाइफ थी, बेटी थी, तो सीधी सी बात है कि वो इंडिया छोड़कर विदेश कभी नहीं जाएगा। वेद का परमानेंट इंडिया में रहने का मतलब मेहरा इंडस्ट्री वही संभालेगा। रुचिका ने सुधीर को फोन लगाया। पिछले दिनों उनका रिश्ता क्या हुआ ये काफी दिन हो चुके थे, मगर एक बार भी उन दोनों ने एक दूसरे को फोन नहीं किया था। मगर मानवी और वेद के मामले को लेकर रुचिका ने सुधीर को फोन लगाया। वो नंबर उसने आज ही इस तब लिया था जब उन्होंने कॉन्टैक्ट मैरिज की बात की थी। अगर फ्री हो तो मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, जैसे ही सुधीर ने फोन उठाया रुचिका ने कहा। हाँ कहो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, सुधीर ने पूछा। वेद भाई और मानवी का क्या चक्कर है, मतलब मेरे समझ में नहीं आया, रुचिका ने कहा। जो भी हुआ कितना फिल्मी था ना, मतलब ऐसा फिल्मों में होता है। बिल्कुल समझ तो मेरी भी नहीं आया कि ये अचानक क्या हो गया, सुधीर ने कहा। मगर मुझे एक बात समझ में आ गई कि उन्होंने हमारे अग्रीमेंट में जो क्लॉज डाली कि अगर हमारे बच्चा होता है तो हम तलाक नहीं ले सकेंगे, इस बात का कनेक्शन इसी से था, मानवी और वेद भाई के मामले से, सुधीर ने समझाते हुए कहा। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, रुचिका ने सोचते हुए कहा। दोनों कितनी देर तक एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातें करते रहे। मानवी और वेद की वजह से ही सही उन दोनों में दोस्ती होने लगी थी। दीपक और सुधांशु का कमरा एक ही था। अब दोनों बेड पर बैठे हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे थे। वेद भाई ने क्या छक्का मारा, दीपक बोला। अब समझ में आ रहा है कि वो हमें अवनी से दोस्ती क्यों करवा रहा था। भाई को तो पता था कि वो उसकी बेटी है, और अब भाई अपनी बेटी किसी के पास थोड़ी छोड़ देगा। अच्छा किया कि हमने उसे अपने पास ले लिया, सुधांशु ने कहा।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें।